ओम शांति। हम सभी का संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की प्राप्ति करना। क्योंकि विदेश में जहां तहां एंजल्स की यादगार है, फरिश्तों की यादगार पाई जाती हैं, भारत में देवियों की, देवताओं की और परियों की यादगार पाई जाती है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, फरिश्ता स्थिति अनुभव करके उसके द्वारा मानवता की बहुत सेवा की है, सल्वेशन आर्मी बनकर। इसलिए आज तक भी वो यादगार है। तो अभी बाबा का इशारा है, कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में खड़े हैं। हमें केवल बाबा को फॉलो करना है। तो फरिश्ता जो शब्द है, जैसे मुख से उसका उच्चारण करते हैं, मानस पटल पर अलौकिकता के भाव उभरने लगते हैं। फरिश्ता जो है उसकी दो मुख्य निशानियां होती है। पहली निशानी फरिश्ता, फर्श से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, फर्श वासियों से भी कोई रिश्ता नहीं होता है। सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ उसके होते हैं। इसके लिए उसको क्या कहते हैं? फरिश्ता। और दूसरी निशानी है फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी। ये स्थूल शरीरधारी नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी वो अनुभव करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें पांच बातों पर अभ्यास करना होगा। अगर पांच बातों पर दिल से आप अभ्यास करेंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी, ये गारंटी है। पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की जो दुनिया है, अव्यक्त वतन, उसके बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी हो, न केवल जानकारी हो लेकिन वहां जाकर हमें उस अव्यक्त वतन का अनुभव भी करना है, उसको हमें यूज भी करना है। तो मैंने 1991 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि दादी जी फरिश्तों की दुनिया में ट्रांस मैसेंजर बनकर कई बार जाती रही। तो दादी जी को मैंने पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो थोड़ा सा मुझे आप स्पष्ट कीजिए। तो जो बातें दादी जी ने मुझे बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात, दादी जी ने कहा कि ये जो पांच तत्वों की दुनिया है, इन पांच तत्वों की दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश सदा छाया रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है, धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे चारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश जैसा वहां हमेशा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नयनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है, वो मुख से नहीं बोलते हैं, इशारे की भाषा उनकी होती है। तीसरी बात, वहां की जो कारोबार चलती है वो संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है। बाबा ने संदेशी बहन को जो भी दर्श दिखाना होता है, एक सेकंड में संकल्प शक्ति के आधार से बाबा उस दर्श को इमर्ज करते हैं और हम बच्चों को विशेष आगे बढ़ने के लिए मैसेज भेजते हैं। और मजे की बात यह है कि जब से हमारा अलौकिक जन्म होता है, ब्राह्मण जन्म होता है, उस दिन से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास सूक्ष्म वतन में सदा रहता है। बाबा क्या करते हैं, ये पुरुषार्थी स्वरूप और वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस पीठ से समीप आ रहे हैं ये बाबा वतन में देखते हैं। तो ऐसी वो फरिश्तों की दुनिया हमें दिव्य नेत्र के सामने सदा रखनी है और वहां हमें जाना भी है और वहां के वातावरण को हमें अनुभव भी करना है, क्योंकि हमारा घर अभी वर्तमान समय कौन सा है बोलिए, परमधाम। सारा दिन टाइटल लेके घूमते हैं, ब्रह्मा कुमार फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलानी, तो ब्रह्मा बाप हो गया। तो जहां मेरा ब्रह्मा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो घर कौन सा है हमारा, सूक्ष्म वतन। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा इस देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट जलती रहे, ये हाउस लाइट का हाउस हमें अनुभव करना होता है। ये स्थूल हाउस नहीं है, ये दिव्य प्रकाश का लाइट का हाउस है। इस हाउस में आत्मा का बल्ब हमेशा जल रहा है, ऐसा हमें अनुभव करना है। माया उसका स्विच ऑफ कर देती है, हमें उसका स्विच ऑन करना है। ब्रह्मा बाबा ने इसका बहुत अभ्यास किया, इसलिए बाबा मधुबन में जहां पर भी गुजरते थे बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। इसलिए कहते हैं ना, चाल कैसी हो फरिश्ते जैसी हो और हाल हमारा खुशहाल हो। तो बाबा हमेशा फरिश्ते की तरह लगते थे, क्योंकि उनके देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी निरंतर। बाबा ने यह अभ्यास बहुत किया। प्रकाशमणि दादी जी एक बार अनुभव सुना रही थी कि बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, एक एक बात मुझे समझा रहे थे। तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल हाथ नहीं लगा, लेकिन लाइट का हाथ या रुई का हाथ मुझे लग रहा था। क्यों? क्योंकि बाबा स्वयं को दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करते थे। तो गुप्त ही गुप्त अभ्यास हमारा ये चलता रहे। इस देह में रहते हुए एक लाइट का देह, लाइट का हाउस हमें अनुभव करना है। फरिश्ता माना ही लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करना, क्योंकि ये आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती है। तो उसके बाद हमें ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होने लगता है। दिव्य प्रकाश भी प्रस्फुटित हो रहा है और शक्तियां भी प्रस्फुटित हो रही हैं। ऐसी अनुभूति हमें भी होती है और हमारे संपर्क में आने वालों को भी होती है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को सदा लाइट अनुभव करना जरूरी है, बिल्कुल हल्के अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर जाती है। फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं। कहते हैं फरिश्ते का पैर कभी भी धरती से लगा हुआ नहीं होता है, तो उनका बुद्धि रूपी जो पैर है ना, वो इस धरती से ऊपर उठा हुआ दिखाते हैं। हमेशा वो लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। हल्की चीज ऑटोमेटिक ऊपर जाती है। बलून अगर हम छोड़ते हैं हाथ से तो ऊपर जाता है। तो स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है, बिल्कुल हल्के अनुभव करना है। कोई भी प्रकार का बोझ हमारे मन और बुद्धि पर न हो, तब हमें ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति होती है। अभी हम सारा दिन अपने कारोबार में बिजी रहते हैं, लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी को लेकर आगे चलते हैं, तो कभी कभी बोझिल अनुभव करते हैं। बाबा ऊपर से देख रहे थे, द्वापर युग से हम अपने सिर पर बहुत बोझ ढोते थे और अपने को बोझिल अनुभव करते थे। तो बाबा सोच रहे थे कि मैं जब धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को सदा लाइट रखूंगा। तो बाबा कहते हैं मुझे अपना बोझ जिम्मेदारी का दो। हम बाबा को दे भी देते हैं, लेकिन पुनः उसको वापस भी लेते हैं। थोड़ा नीचे कम होता है, पता नहीं ये काम सही होगा या नहीं होगा, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए वो बोझ हम अपने पर ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी जो भी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी होती है वो बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। एक बार क्या हुआ, डबल विदेशी भाई ओम शांति भवन में बाबा के साथ मिल रहे थे, ये 87 की बात होगी। मुरली पूरी हो गई, फिर बाबा ने कहा किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। एक विदेशी भाई सभा में खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, बाबा विदेश में हम लौकिक जॉब की जिम्मेदारी, बाबा के सेवा केंद्र को संभालने की जिम्मेदारी निभाते हैं और सारा दिन घोड़े की तरह भागते रहते हैं और थक जाते हैं, और अमृत वेले जब बैठते हैं योगाभ्यास के लिए तो हमेशा माया को नमस्कार करते रहते हैं, सैल्यूट मारते रहते हैं, सैल्यूट माया। तो बाबा मुस्कुराए, अच्छा। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि देखो इस संसार में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति कौन है, ब्रह्मा बाबा है, उनसे बढ़कर बिजी इस संसार में कोई भी नहीं है। सबसे बिजी रहकर नंबर वन इजी रहकर कर्म योगी का श्यामपल बाबा बनकर दिखाया। वो आपका बाप है, किसी और का नहीं, आपका बाप है। अगर आपका बाप ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अनुभव कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? तो भाई ने सुना, फिर थोड़ी लंबी सांस लिया, हाँ हो तो सकता है, क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारे लिए बाबा एग्जांपल हैं, बाबा ने सब बातें सहज करके रखी हैं, ठीक है ना? तो हमेशा बाबा को जिम्मेदारी हमें देना है। प्रकाश मणि दादी जी 38 वर्षों तक दादी जी ने यज्ञ की जिम्मेदारी निभाई, और दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक मधुबन में रहा, और दादी जी के से मैंने बहुत बातें जीवन में सीखी। तो दादी जी का मैं इंटरव्यू ले रहा था 95 में, मैंने प्रश्न पूछा, दादी जी आप इतना बड़ा कारोबार संभालती हैं, इतने हजारों सेवा केंद्र हैं, मधुबन का कारोबार संभालती हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन का चिन्ह नहीं देखा, आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह लाइट रहती हैं। क्या राज है आपके सदा हल्के रहने का, मुझे आप स्पष्ट समझाइए। तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखो आतम भाई, सबसे पहले तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं, करण करावनहार बाबा है, मैं केवल कठपुतली हूं, करणहार हूं, मैंने बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में दी है, जैसे बाबा मेरे द्वारा सेवा कराते हैं मैं करती हूं, मैं कुछ नहीं करती हूं, बाबा करा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, दादी जी ने कहा सदा मेरे कंधे पर एक तरफ शिव बाबा रहते हैं और दूसरे तरफ ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ सदा हाजिर रहते हैं, कोई भी समस्या आती है उनकी मदद से चुटकी से पार हो जाती, सदा मैं हल्की रहती हूं, ठीक है ना? तो हमें बाबा की मदद लेते रहना है, हल्की माना है लकी, क्यों भाई? क्योंकि हल्की आत्मा हमेशा उड़ती रहती है और बाबा के पास जाकर बाबा से खजाने लेती रहती है और अपने भाग्य को, लक को और अच्छी तरह से संवारती जाती है, चमकाती रहती है, तो भाग्यशाली हो गई ना। तो हमेशा हमें लाइट रहना है, एक आत्मा की लाइट और दूसरा हल्केपन की लाइट, ऐसे डबल लाइट ही फरिश्ते स्थिति की अनुभूति करते हैं, सदा उड़ते रहते हैं। हम स्थूल शरीर समझेंगे तो ये 50-60 किलो वजन वाला शरीर सारे दिन भर में हम लेकर घूमते हैं, तो स्थूल शरीर से न्यारे हो जाएं और एकदम लाइट का शरीरधारी अनुभव करेंगे तो हल्के फुल्के होकर उड़ते रहेंगे, ठीक है। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए कोई भी बंधन मुझे न बांधे, कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को न बांधे, क्योंकि हम माया के गुलाम बनकर रहे, उसके जेल में रहे, इस देह के पिंजड़े में इतने वर्षों तक रहे, तो अभी हमें आजादी चाहिए, कोई भी बंधन मुझे बंधा हुआ न हो। तो दो प्रकार के बंधन हमें सारे दिन भर में बांधने का प्रयास करते हैं। पहला प्रकार हमारा व्यक्ति के तरफ आकर्षण हो सकता है और कभी कभी वस्तु के तरफ आकर्षण हो सकता है। ये दो प्रकार की रस्सियां बार बार हमें बांधने का प्रयास करती है। कारणे अकारणे किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता है, कभी वस्तु के तरफ आकर्षण होता है, क्योंकि हमारा ये संस्कार 63 जन्मों का बड़ा कड़ा बन चुका है, आकर्षण करना और आकर्षित होना। तो हमें क्या करना है, कोई भी संबंध अगर हमें आकर्षित करता है तो वो विशेष संबंध हमें शिव बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है, यहां से बुद्धि योग हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। हम रिटर्न जर्नी पर है अभी, इस साकारी दुनिया से हमें आकारी दुनिया में जाना है और आकारी दुनिया से निराकारी दुनिया में जाना है। तो बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाएंगे तो फरिश्तों की दुनिया में हम अच्छी तरह से लंबे समय तक रहते जाएंगे। ठीक है, कोई भी संबंध मुझे मिस नहीं करना है। बाबा सर्व संबंधों की सक्रीन है, सर्व संबंधों का रस प्राप्तियां हमें अनुभव कराते हैं, इसलिए बाबा को हमें बहुत अच्छी तरह से बिजी रखना है। सारा दिन भर में सुबेरे से लेकर रात्रि तक विभिन्न प्रकार के संबंध अनुभव करते जाना है और बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जोड़कर रखना है। ठीक है, संबंध जोड़ने से बंधन कटते जाते हैं। और दूसरी बात है व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना। व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता भी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि सारे कल्प में तो हम व्यक्तियों के साथ ही रहे थे और रहेंगे। संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें हम भगवान के साथ संबंध अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में दोबारा फिर ये चांस ही हमें नहीं मिलता है, इसलिए अभी संगम युग में परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है। कहते प्यार के सागर से जिनों को प्यार मिलता है वो भरपूर रहते हैं, उन्हों को किसी व्यक्ति से प्यार मिले वो आस या प्यास नहीं रह सकती है, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई वस्तु हमें आकर्षित भी कर सकती है। अगर कोई वस्तु आकर्षित करती है तो हमें सोचना है कि यहां की कितनी भी अच्छी वस्तु हो, बाबा ने कहा है विसारी विनाशी चीजें हैं और एक भी चीज सतयुग में नहीं जानी है, सारे विनाशी है, सारे अल्पकाल के हैं, क्षण मंगूर है। तो ये विनाशी चीजें किस क्या मोह लगाना है, और ये सतयुग में तो जाने वाली है ही नहीं। इसलिए कोई भी अच्छी वस्तु हमारे पास न हो, अगर अच्छी है भी तो हमें बाबा को उसको दे देना है और बाबा की अमानत समझकर उसको यूज करना है। तो वस्तु से भी नहीं रहे और व्यक्ति से भी नहीं रहे, तो सब न्यारापना होगा तो बाबा के प्यारे हम अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि जितना यहां से न्यारे उतना बाबा से प्यारे अनुभव करेंगे। कहते हैं ऊपर वाले राम का साथ अनुभव करना है तो यहां से हमें उपराम रहना होगा। जब तक उपराम नहीं तब तक ऊपर वाले राम को याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव बढ़ाते जाना है, ठीक है ना? बिल्कुल न्यारा। कोई पेशेंट होता है और वो बहुत अंतिम सांसें गिनता है तो कहता है बस मुझे तो यहां से जाना है, मुझे यहां से जाना है, ऐसा बुद्धि में होने से वो सबसे न्यारा होता है, सब सब बातों से किनारा करता है, मुझे यहां से जाना है। तो ऐसे हम मुरली में सुनते हैं अभी परम धाम रूपी घर वापस जाना है, सुनाते भी हैं, लेकिन जब तक उसको दिल से स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हमारा सूक्ष्म लगाव इस देह की दुनिया से, देह के पदार्थों के साथ में थोड़ा सा जरूर होता है। बाबा कहते बिल्कुल आपको उससे न्यारे स्वयं को अनुभव करना है, ठीक है ना? तो ये सूक्ष्म चेकिंग करना है, क्योंकि हमें अभी कहां जाना है, किसकी दुनिया में जाना है? हाँ जी, हमें मोह न की दुनिया में जाना है। किसके? मोह न कृष्ण की दुनिया में जाना है। अब मोहन की दुनिया में जाना है तो मोह को नष्ट करना होगा ना। तो कोई भी व्यक्ति वैभव के साथ हमारा रिंचक मात्र भी लगाव न हो, मोह न हो, तभी कृष्ण के साथ में हम सतयुग में अनुभव करेंगे, समीप अनुभव करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे भाई? क्योंकि वहां हमें साथ मिलता है संस्कारों के समीपता जैसा समानता का होता है, तो उतना हमें साथ मिलता है सतयुग में। तो कृष्ण के साथ हमें राज करना होगा, उनके साथ रहना होगा। इसके लिए कृष्ण जैसा मोह को नष्ट करने वाला मोह न बनना है, ठीक है? पांचवी बात, ऐसे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है, और उसके साथ में ये जो पुरुषार्थ स्वरूप है उसकी भेंट करना है, उसकी कंपैरिजन करना है। अगर पुरुषार्थ स्वरूप में कोई कमी है तो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से उसका आह्वान करना है, कमी का अपोजिट जो गुण होता है उसका हमें स्वयं में आह्वान करना है, तो कमी निकलती जाएगी और अच्छाई आत्मा में भरती जाएगी, समझा? इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें कमियों को निकालते जाना है और अच्छियों को धारण करते जाना है, अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने इमर्ज करना है। कैसा है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप? हाँ जी, उसका आकार ऐसी, ये जो शरीर है ना ऐसा ही उसका आकार है। अंतर क्या है? केवल ये पांच तत्वों से बना हुआ है और वो लाइट से, दिव्य प्रकाश से बना हुआ है। अंतर इतना ही है, आकार एक जैसे ही है। और दूसरा, उस परिस्थिति स्वरूप में तीन बातों की संपन्नता होती है, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। शक्तियों से, नशे से और गुणों से संपन्न ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमारा उड़ता जाता है और वो हमारी इंतजार कर रहे हैं, वो हमें सेखन करना चाहता है। और तीसरी बात, उसमें क्या होता है, बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी उस फरिश्ते ने धारण किया होता है, पवित्रता का ताज दिव्य और भव्य धारण किया हुआ है। और दूसरी निशानी बुद्धि की तार परमात्मा के साथ निरंतर जुटी हुई रहती है, ऐसा हमें अपना फरिश्ता स्वरूप सामने इमर्ज करना है और ऐसा अनुभव करना है वो मेरी वेट कर रहा है, मुझे उसके जैसा बनना है, तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और हम तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना अगर है तो क्या करना होगा? तीन प्रकार के प्रयोग आपको बार बार करने हैं। आप जहां पर भी रहते हैं ना, जो भी आप सेवा करते हैं, सेवा क्षेत्र में रहते हुए तीन प्रकार का प्रयोग आपको बार बार करते जाना है। पहला प्रकार, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने इस स्थूल काया को धारण किया है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं। बहुत आप हल्के फुल्के होकर चलते रहेंगे कि स्थूल जमीन पर स्थूल आत्मा में चल रहा हूं, ऑर्डिनरी आपकी स्थिति होगी। लेकिन दूसरा प्रयोग है, अपने भान को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा अच्छा मेंटेन करो, ऊंचा भान मेंटेन करो और ऐसा अनुभव करो कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है और लाइट की जमीन पर चल रहा हूं। ऐसा हमें अनुभव करना है। देखते वाले देखते ही रहेंगे, ये तो कोई फरिश्ता यहां आया हुआ है, ऐसा अनुभव लोग करेंगे। और तीसरा प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु ने रुई का शरीर धारण किया है, कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन के जमीन पर चल रहा हूं, तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के होकर चलेंगे। तो कोई भी हमें प्रयोग करते जाना है और उसका रिजल्ट देखना है। तो धीरे धीरे प्रयोगी बनने से हमारी स्थिति निखरती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छी तरह से हमारी उन्नति होती जाएगी। तो जहां पर भी हम कर्म कर रहे हैं ना, कर्म क्षेत्र पर हमें ये प्रयोग करना है, केवल मनसा को चेंज करना है, संकल्पों को चेंज करना है। ठीक है ना? तो ऐसा हमें बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते रहना, सारे दिन भर में करते रहना है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा एक दिन दोपहर को 2 बजे ये बनियन और निकर पहनकर मधुबन में जो मेडिटेशन हॉल है वहां एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। पांडव भवन गेट के गेट से एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति आया अंदर और सोचने लगा, यहाँ का इस संस्था का मुखिया कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है, इधर उधर देख रहा था। लेकिन बाद में उसको दिखाई दिया कि वो देखो पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है, चलो उनसे मिलते हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे जाने लगा और जैसे बाबा के पास जाकर खड़ा हुआ, बाबा ने उसको देखा और उसने बाबा को देखा, तो उसको ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। और जैसे उसको साक्षात्कार हुआ, वो बाबा के पैर पकड़ने लगा, ये व्यक्ति देखो कितना साधारण काम कर रही है, गोबर के गोले बना रही है, और ये कितनी महान विभूति है, ये के अलौकिक फरिश्ता है, कितनी असाधारण स्थिति इनकी है। तो कहने का भाव है कि कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो। एक बार 87 में बाप दादा हम मधुबन निवासियों के साथ मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा, मधुबन में तो आपकी सेवा बिल्कुल सिंपल है, भोजन बनाना है, कपड़े वॉश करना है, प्रेस करना है, सफाई करना है, ऐसे सारे सिंपल काम करते हो आप। लेकिन काम भले सिंपल करो, लेकिन कोई दरवाजे से खिड़की से जाकर देखे तो उनके लगे कि ये इतने महान फरिश्ते यहां सेवा पर उपस्थित है। साधारण स्वरूप आपका वो नहीं देखे, क्योंकि ये सिद्धांत है। कर्म करते समय जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, हमें कोई देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर होता है और उसको हमारी स्थिति का साक्षात्कार होता है। समझा? तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति मेरी असाधारण हो। क्यों? क्योंकि हम कोई धर्मशाला में काम नहीं कर रहे हैं, कोई मंदिर में नहीं काम कर रहे हैं, भगवान के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। यज्ञ की भगवान के सेवा कर रहे हैं तो ऐसी अलौकिक मस्ती में हमें करना है, नशे में करना है, खुशी में करना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमारी होगी तो ऑटोमेटिक देखने वाले जो संपर्क में आएंगे उनको हमारी स्थिति का अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा। आपने देखा होगा 18 जनवरी के दिन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया जैसे धरती पर आ चुकी है। क्यों ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि हर बाबा का बच्चा अमृत वेले से लेकर बाबा के प्यार में डूबा रहता है और एकदम मौन व्रत धारण करता है, विचरण करता है अपने मधुबन में, तो ऐसा लगता है ये फरिश्तों की दुनिया है, ये फरिश्ते ऊपर से यहां आए हैं। तो हमें ये अनुभव करना है, क्योंकि बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, सत्य ज्ञान के सागर हमें मिले हैं, इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? ऐसे श्रेष्ठ अनुभव करना और कराना। हमारा ज्ञान केवल सुनने और सुनाने का नहीं है, उसका हमें स्वरूप बनना है और स्वरूप बनकर स्वरूप दिखाना है। समझा? इसलिए बाबा ने कहा अभी समय के अनुसार आपको अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना है। समझा? आगे चलकर जब विनाश के बादल मंडराएंगे तो बाबा के बच्चे फरिश्ते बनकर उड़ते रहेंगे और मनुष्य आत्माओं को सल्वेशन आर्मी बनकर सल्वेशन देते रहेंगे। जैसे लौकिक गवर्नमेंट के पास आर्मी होती है, ये स्थूल आर्मी होती है, ऐसे भगवान के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी होती है फरिश्तों के रूप में। और जब विनाश आएगा, विनाश के समय मनुष्य आत्माएं सफर होंगे, उस समय ये फरिश्ते उड़कर जाएंगे और उनको मदद करेंगे, क्योंकि उनको भगवान का परिचय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं में फंसा हुआ रहता है तो वो ऐसा सोचता है कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल के चला जाए, क्योंकि उन्होंने सुना है कि फरिश्ते हमें मदद करने के लिए दौड़कर आ सकते हैं। वो अभ्यास हमें अभी से करना है। बैठे हम यहां हैं और हमारा फरिश्ता स्वरूप जहां पर भी समस्या है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं पर भी है, उस स्थान के ऊपर फरिश्ते के रूप में हम विचरण कर रहे हैं और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान दे रहे हैं। ऐसा अनुभव हमें अभी करना है और जितना जितना अनुभव बढ़ता जाएगा उसमें हमारी मास्टरी होती जाएगी और जिस समय उसकी आवश्यकता होगी उस समय ऐसा प्रयोग हम करते जाएंगे। ठीक है ना? तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा फरिश्ता स्वरूप बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया था। हमें बाबा के कदमों पर कदम रखना है ना? सफर में जाते हो तो क्या करते हैं आप बताओ? पर्स में एक चीज ले जाते, बताओ कौन सी चीज ले जाते हैं जी? छोटा आईना जरूर लेके जाते हैं और जब मौका देखते वो आईने में अपना चेहरा देखते हैं, कैसा है मेरा चेहरा। तो हम भी इस रूहानी सफर में जा रहे हैं तो शिव बाबा ने भी हमें बहुत सुंदर आईना दिया है, मिरर दिया है, वो हमें बुद्धि में रखना है। कौन सा आईना दिया है? संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्थिति रूपी आईना दिया है, मिरर दिया है, और उसमें हमें अपने आत्मा की स्थिति का चेहरा देखना है। ब्रह्मा बाबा कैसे और मैं कैसी, आत्मा बाबा कैसे मैं कैसे, अपने स्थिति को मेकअप करना है। कोई कमी है तो उसको निकालना है और दिव्य गुणों को धारण करते रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान बनना। देखो उस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए मना है और इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए छुट्टी दी है, बल्कि जो बहुत अच्छी कॉपी करेगा उसको इनाम मिलता है। बताओ भाई कितना बाबा ने अच्छा हमें सहज काम दिया है, हमें करना कुछ नहीं है, केवल ब्रह्मा बाबा के पद्मों पर कदमों पर चलते रहना है। हमें किसी को नहीं देखना है, केवल ब्रह्मा बाबा को देखना है। मैं कैसा, बाबा कैसे। अगर किसी व्यक्ति को, किसी भाई या बहन को देखेंगे तो उसके अच्छे भी गुण आएंगे नजर और उनके कमियां भी हमें नजर आएगी, तो हमें नहीं देखना है। हमें क्या करना है? देखना है तो बाबा को देखना है, ठीक है ना भाई। तो ऐसा फरिश्ता हमें बनना है। फरिश्ता जो शब्द है ना, ये पांच शब्दों से बना हुआ है, फ र ई श ता। इसकी पांच विशेषताएं हैं। फ अर्थात जो फर्श से हमेशा परे रहता है, न्यारा रहता है, इस साकारी दुनिया से, बुद्धि से न्यारा रहता है। र र अर्थात जिसमें बहुत रॉयल्टी होती है, चलने में, फिरने में, खाने में, बैठने में, हर कार्य जो हम करते हैं उसमें रॉयल्टी झलकती है। ब्रह्मा बाबा के हर कार्य में रॉयल्टी झलकती थी। ई ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में कोई किसी को धोखा देता है तो कहता है ये बेईमानी करता है, झूठ बोलता है। तो हम अपने को देह समझते हैं आत्मा के बजाय, तो हम अपने को भी ठग रहे हैं, है आत्मा और समझ रहे देह। तो स्वयं से भी ईमानदार, परिवार से भी ईमानदार और यज्ञ से भी ईमानदार, उसको कहेंगे ईमानदार। फॉर ई श अर्थात शक्तियों के खजानों से हमेशा भरपूर रहने वाला, क्योंकि अंतिम समय आत्माएं आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे हमें केवल दो घड़ी की शांति दो, दो घड़ी की शक्ति दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो शक्तियों का स्टॉक जिसके पास बहुत भरपूर होता है वो फरिश्ता ही होता है। और तो अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला, जब ऑर्डर मिल जाए सेकंड में उड़ता जाए और सेवा में हाजिर हो जाए। ता अर्थात अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को तारने वाला, पार लगाने वाला। तो ऐसी पांच विशेषताएं फरिश्ते की होती हैं, हमें वो विशेषताएं अपने में चेक करना है। तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, केवल फरिश्ता नहीं, संपूर्ण फरिश्ता। तो संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए ये जो शरीर है, ये 100% लाइट का शरीर हमें अनुभव करना होगा। तो धीरे 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 ये अभ्यास बढ़ता है। तो मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है, ये अभ्यास बढ़ता है तो स्थूल काया का भान धीरे 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 घटता है और ये बढ़ता है। और 100% भान जब लाइट के शरीर का होगा तो समझ लो आपकी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति निखर गई है। समझा? चेहरा फरिश्ते का हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो ना, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी कोई देखना नहीं चाहता है। ये कौन देखेगा रोती सूरत। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान हमें मिला, सुख मिल गया, है ना भाई। और मालिक या बाबा, बाबा जो बागवान हैं, इस बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है, तो बाबा क्या चाहता है, मेरे बगीचे का रूही गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हो, हर एक का चेहरा हमेशा खिला हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो। क्योंकि भगवान बागवान बनकर इस बगीचे को सींच रहा है, है ना भाई। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। अगर हमारी ऐसी फरिश्ता स्थिति होगी तो बाबा हमें यूज करेंगे, हमें चांस देंगे। अगर हमारे पास वो अनुभूति नहीं होगी तो हम चांस नहीं मिलेगा। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सीधा पेट की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, एकदम सीधा होके बैठेंगे। बहुत सुंदर योग की अनुभूति बाबा आपको कराएंगे। ऐसे लेट के नहीं बैठो मस्तिष्क पे, फिर आंखें बंद हो जाती है आपके। ऐसे बैठो चुस्त और मस्त। योगी माना चुस्त और मस्त सदा रहने वाले हैं, ठीक है ना भाई। चलो ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा, भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूं। मैं आत्मा राजा, अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा हूं, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज धारण किया है। मैं आत्मा राजा पवित्रता का ताज धारी हूं। परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा इस
देह रूपी महल से न्यारा होकर दिव्य बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने निकला हूं। बादलों से पार इस विश्व के गोले से पार उड़ रहा हूं। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। कैसी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। जहां चारों ओर सफेद सफेद देवियां प्रकाश प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। फरिश्तों के महाराजा विश्व महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके प्रकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। बाबा बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। प्यारे बच्चे, मैंने अपना खोया हुआ लाल पांच हजार वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब चाहो, जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो। मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान मुझे साकार रूप में आकर पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा। वो हर रोज दूर देश से आकर मुझे मुरली के माध्यम से ज्ञान के कोई रास बड़े प्यार से सरलता से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम सदगुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरदहस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। मैंने दिए हुए महामंत्र का मनमना भव के मंत्र का जाप करते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं, त्रिमूर्ति बाप के पालना में पलने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा, बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में पुनः बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, परम धाम मेरा शांति धाम। ओह मेरे प्राणों की प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवपिता, मज आत्मा के समक्ष विराजमान है। आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रहे हो, उनकी सुंदरता का आनंद ले रहे हो। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति सूर्य शिव पिता से असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महाज्योति परम ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन मना रही हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति आ रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति, निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन, पुष्पक विमान में बैठ कर लौट रही हूं इस साकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। और मैं आत्मा राजा इस शरीर रूपी महल में पुनः प्रवेश कर चुका हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल में चारों ओर फैलकर वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। डायरेक्ट परम धाम से, ज्ञान सूर्य सुपिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझातम ज्योति पर पड़ रहा है। शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा नहा रही हूं, शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है।